एक बार मम्मा से पूछा गया कि उनके बचपन की ख्वाहिश क्या थी, वे क्या बनना चाहती थी। मम्मा ने बताया, मैं भक्ति करना चाहती थी। लोग आज भी मीरा की प्रशंसा करते हैं। मैं भी ऐसा काम करना चाहती थी जो मेरे जाने के बाद सारी दुनिया मुझे याद करे। भक्ति मार्ग में लोग देवियों की पूजा करते हैं। वास्तव में ये देवियाँ आत्मा की शक्तियों का यादगार है। मम्मा उन सारी शक्तियों की स्वरूप थी, यह उनके चलन से हमने देखा है। देवी सरस्वती ज्ञान वीणा बजाती है और सर्व आत्माओं को अज्ञान के अंधकार से निकाल प्रकाश की जागृति और महसूसता कराती है।
मम्मा ज्ञान स्वरूप थी, उनके बोल अति मधुर थे। सरस्वती के सभी गुण प्रत्यक्ष रूप में मम्मा के जीवन में थे।
मम्मा हमेशा कहती थी, मैं वही बोलूंगी जो मैंने बाबा से सीखा है। उन्होंने वही बोला जो धारण किया, इसलिए उनके बोल आनंदकारी और मधुरता संपन्न थे। बाबा की मुरली सुनने के तुरंत बाद ही मम्मा उनका स्वरूप बन जाती थी। हर दिन में हर कार्य करते हुए मम्मा आध्यात्मिक ज्ञान के मंथन में समाई रहती थी। वह बाबा के एक एक महावाक्य पर 10 दिनों तक विचार सागर मंथन कर सुनाती थी और छिपा हुआ रहस्य खोलती थी। एक पॉइंट पर ही 1 घंटा बोल लेती थी। यह सिद्ध करता है कि मम्मा कैसे ज्ञान की महीनता में जाती थी और हर बात का स्पष्टीकरण बताती थी।
मम्मा बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाली थी। चिड़िया जैसे दाना चुगती है, चबाती है और फिर अपने बच्चों को खिलाती है, ऐसे ही मम्मा बाबा के दिए हुए ज्ञान को मनन करती और बहुत सरल रीत से बता जो हर एक उसको समझ सके। साधारण व्यक्ति भी मम्मा की मुरली समझ सकते। जो अच्छे गीता पाठी हैं, उनको एक बार मम्मा से मिलने का निमंत्रण दिया गया। मैंने अपने से प्रश्न किया, मम्मा जो शास्त्र पढ़ी ही नहीं है, वो इनको संतुष्ट कैसे कर सकती हैं? उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या आप कहते हैं कि ये गीता गलत है? मम्मा ने सीधा जवाब दिया, आप प्राप्ति को क्यों नहीं देखते हो? गीता है ही समाज के लिए, लेकिन समाज कलयुग बन गया है। ज्ञान श्रेष्ठ होते हुए भी बुराई का जन्म क्यों है? यहाँ पर परमपिता कहते हैं, मैं गीता ज्ञान सुनाकर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो आप ही बताइए, कौन सी गीता सच्ची है? गीता जो विश्व परिवर्तन करती है वह, या जो इमोरलिटी को जन्म देती है वो? आप सब पढ़े लिखे हैं तो अंधश्रद्धा से बाहर निकलो और सत्यता के बारे में सोचो। यह सुनकर वह एक दूसरे के कान में बात करने लगे। मम्मा ने प्राप्ति के बारे में बात करके उनको शांत कर दिया।
कोई ने मम्मा से उनके श्रेष्ठ वाक्यों को टेप में रिकॉर्ड करने का आग्रह किया। मम्मा थोड़े समय के लिए गहन शांति में बैठी, फिर बाबा की एक मुरली मंगवाई और उसमें से ही कुछ महावाक्य रिकॉर्ड कर दिए। मम्मा ने अपना कुछ भी मिलाया नहीं और ना ही कुछ बदला। मम्मा के बोल बहते झरने की तरह हमारे जीवन में रूहानियत भरते गए। मम्मा ने बाबा से प्राप्त ज्ञान प्रकाश से हर एक को प्रकाशित किया। उनके बोल सागर से भी गहरे, गगन से भी ऊंचे और गंगा जैसे बहते रहे। उनसे सुनते बार बार सोचा कि हमें भी मम्मा जैसा जीवन बनाना है। अम्बा, अशांत और बेचैन मानवता को स्थायी खुशी और शांति का वरदान देने वाली है। वे हर एक के दिल की आशा को पूर्ण करने वाली है। मामा के जीवन में चुंबकीय शक्ति थी, उनसे हर एक को अपनापन मिला, यही उनकी वास्तविक पहचान थी। मामा आत्माओं से ऐसे मिलती थी जैसे कि वह सच में साकार में जगदम्बा हो।
मामा की ये विशेषता थी कि अपने हर एक बच्चे को प्यार दिया। मामा ने हर एक बच्चे के लिए समय निकाला और हर एक को श्रेष्ठ बनाया। मम्मा का प्यार निस्वार्थ था, उनकी दृष्टि हर एक बच्चे के लिए विशेष रही। वह हर एक को ऊंची दृष्टि से देखती थी। हम में से कोई भी उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। हम उनके गुणग्राही सुबह के गीत गाया करते थे। अच्छाई के बारे में सोचते ही बुराइयां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। मम्मा आपसी झगड़े को प्यार के संबंध में बदल लेती थी और दोनों के लिए समानता और प्यार की दृष्टि रखती थी।
मामा सच में एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन यज्ञ के मां बनने के कर्तव्य को उन्होंने स्वीकार किया। मैंने अपने लौकिक माता पिता सहित सभी बड़े बच्चों को मम्मा कहकर संबोधित करते देखा। हर गुरुवार के दिन मधुबन में जो बहन संदेशी बनकर शिव बाबा का भोग लेकर वतन में जाती थी, वो मम्मा की लौकिक माँ थी। मुझे बहुत आश्चर्य लगा जब देखा मम्मा की माँ ने भी मम्मा को मम्मा कहकर बात की। उनकी लौकिक बेटी जैसे रूहानी माँ है। पहली बार ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बड़ी होते हुए भी माँ जैसे की बेटी दिखाई थी। मैंने देखा कैसे उसके संस्कार और स्वभाव में बदलाव।
स्वाभाविक रूप से ही उनका व्यक्तित्व बहुत प्रकाशमय और मातृस्नेह से भरपूर था। सबके दिलों को उमंग उत्साह और आशाओं से भरपूर करती है, निराशा और दुख दूर करती है।
मम्मा सब बातों में नंबर वन थी। क्लास आरंभ होने पर सबसे पहले मम्मा होगी, योग प्रारंभ होने पर भी सबसे पहले मम्मा होगी। मम्मा सब परिस्थितियों में एक रस थी और वह हर तरह के कारोबार में साथी बनती थी। उदाहरण के लिए सिलाई विभाग में मम्मा आगे बैठती थी। हमको ये लगता था कि हमें उनसे कुछ सीखना है। मम्मा सब्जी काटने आती थी, हम एक एक करके खाना बनाते थे, सब मिलकर भी खाना बनाते थे। मम्मा हर ग्रुप से मिलती थी, मम्मा रोटी बनाने भी आ जाती थी। मम्मा के आते ही सबको संदेश मिल जाता और सब अपना काम पूरा करने में लग जाते थे। मम्मा कुछ कहती नहीं थी, उनके सिर्फ खड़े रहने से ही सब हो जाता था।
ममा का उत्साहित और दिव्य बोल कमजोर आत्माओं में भी बल भर देता था।
ममा सेवा के लिए कोलकाता में रुकी थी। एक दिन मैंने एक होलसेल डीलर को देखा जो दिवालिया हो गया था। वो जीवन से बहुत निराश था और आत्महत्या करना चाहता था। मैंने कहा, आपके भाग्य ने जगदम्बा सरस्वती को आपके घर में लाया है, आप अपने दुखदायी परिस्थिति के बारे में बताइए और समाधान लीजिए। जब वो व्यक्ति मम्मा के सामने गया, मम्मा ने बहुत शक्तिशाली दृष्टि और रूहानी प्यार दिया। मम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, जीवन हार और जीत का खेल है। कोई भी व्यक्ति दुख सुख, जीत हार, मान अपमान, प्रशंसा निंदा से दूर नहीं जा सकता। इस रूहानी ज्ञान को महीनता से समझो, योग अभ्यास करो, निमित्त बनकर अपने कार्य व्यवहार को संभालो, शेष अपने आप अच्छा हो जाएगा। मम्मा से प्यार भरे बोल सुनकर उसके नैनों से प्यार की धारा बहने लगी। मम्मा ने फिर से प्यार भरी दृष्टि देकर और उसके दिल के सारे दर्द को निकाल दिया। बहुत साल बाद जब मैं इलाहाबाद में था तो उसी भाई से मुलाकात हुई। उनको वो पुरानी कहानी याद दिलाई। वह फिर से हेल्दी वेल्दी और हैप्पी दिखाई दे रहा था। मम्मा के उन मधुर बोलों को बार बार याद कर रहा था जिनसे उसे नया जीवन मिला।
मम्मा से मिलकर आनंद और हल्केपन का अनुभव होता था। उनका सानिध्य इस आध्यात्मिक संस्था की पूरी शिक्षाओं को धारण करने के लिए प्रेरित करता था। वैष्णव देवी पवित्रता के किरणों को सब पर फैलाती है और साधारण मनुष्य आत्माओं को दिव्य गुण संपन्न और संपूर्ण निर्विकारी दैवी मानव बनने के लिए प्रेरित करती है। मम्मा चैतन्य रूहानी चुंबक थी। उनकी दृष्टि में रूहानी जादू भरा था। वह अवतरित देवी मर्यादा पूर्ण और दिव्य गुणधारी थी, जो पतित दुनिया को पवित्र बनाने के लिए अवतरित हुई।
एक बार एक आदमी आया, वो मम्मा से मिलना चाहता था। उनके आग्रह पर मिलने की छुट्टी दे दी गई। वो मम्मा के सामने बैठ गया। जीवन में पहली बार उसने निर्विकारी आत्मा की पवित्रता की ठंडक और आनंद को महसूस किया। उसको लगा कि मन में एक भी व्यर्थ या नकारात्मक विचार नहीं है। वह अनुभव सिर्फ क्षण भर का था। उसने महसूस किया कि मम्मा पवित्र और महान आत्मा है। उस आदमी ने भी कुछ नहीं बोला और मम्मा ने भी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप खड़ा होकर मम्मा को निहारने लगा, अपने मम्मा की सानिध्य का अनुभव किया। उसको भासना आई कि ये मेरी माँ है, मुझे इनकी गोद में रहना है। उसने सोचा, ऐसा करने से बाकी का सारा जीवन पवित्र हो जाए।
मम्मा बहुत ही बड़े दिल वाली थी। वह अपने अंदर सब कुछ समा जाती थी, जैसे कि किसी बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं हो। वह कभी भी किसी की कमजोरी दिल में नहीं रखती थी। सब आत्माओं के बीच रहते हुए, सबसे सुनते हुए, वह हमेशा न्यारी और प्यारी रही।
संपूर्ण ड्रामा के अंदर वह एक ही है जो ज्ञान की मूर्ति बनी। सब उनको मम्मा कहते थे। नया आने वाला भी माँ कहकर बुलाता था। कोई उन्हें निमंत्रण देता तो उस निमंत्रण पत्र में लिखा हुआ होता था, ओ आप हमारी माँ, आप पवित्रता की देवी हो। सब अनुभव करते थे कि मम्मा किसी को अगर छूती भी है तो उनके विकार भाग जाते हैं। उनकी पवित्रता की चुंबक समान खींच होती थी। पवित्रता उनकी दृष्टि में, चलन में, मुस्कुराहट में समाई रहती थी। वह सारी दुनिया से बिल्कुल ही अलग थी। उनकी मुस्कुराहट के आगे करोड़ों रुपए भी कुछ भी नहीं।
मामा के चेहरे का भोलापन एक ऋषि जैसे दिखाई देता था, एक बच्चे जैसा हार नहीं खा सकता। काली माना निर्भय, हिम्मतवान, विकारों को भस्म करने वाली तथा हर आत्मा के अंदर की अशुद्धि निकालने वाली। मामा मीठे स्वभाव के साथ निर्भय भी थी। उसका मानना था भगवान जिनसे हम डरते थे वह अपना हो गया, अब किससे डरे। जो पाप करता है वह डरे, हम तो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, भगवान की आज्ञा पर चलते हैं, तो हम क्यों किसी से डरे।
मम्मा ने बहुत युक्ति सिखाकर हमें निर्भय और मजबूत बनाया। मम्मा ने हमें शिक्षा दी, आप आ सकते हो, आपको कोई रोकेगा नहीं। घर में प्यार से रहना है ताकि लौकिक माता पिता समझे कि आप बुरी जगह नहीं जा रहे हो, वह समझेंगे आपको सुंदर शिक्षाएं मिल रही हैं। अगर कोई गलत बात कहते हैं तो सहन करो, तुरंत विरोध नहीं करना है। मम्मा की शिक्षाओं को घर में उपयोग करके हम सब संबंधों में सफल रहे हैं। बाबा ने मुझे अमृतसर भेजा मम्मा को फॉलो करने। ऑपोजिशन करने वालों का बड़ा ग्रुप था, हजारों लोग थे, दरवाजा तोड़ने लगे। मैंने दरवाजा खोलकर बोली कि अभी मम्मा किसी से नहीं मिलेगी। पांच छह लोग जबरदस्ती घर में अंदर घुसे और सीढ़ी चढ़कर मम्मा के कमरे में गए, जहां मम्मा गहन योग और शांति में बैठी थी। मम्मा को देखकर वो लोग भी शांति का अनुभव करने बैठ गए। वो आए थे झगड़ा करने और क्रोध दिखाने, लेकिन मम्मा के सामने शांति से बैठ गए। थोड़ा भी आवाज करना उचित नहीं लगा, वे मम्मा को ही देखते रहे। मम्मा उनको प्यार से निहारते हुए, मुस्कुराते हुए योग की तरंगे फैलाती रही। वो लोग शांत हो गए, मानो कि वो जगह छोड़ना नहीं चाहते थे। बाहर लोग इनके इंतजार में खड़े थे। जब ये लोग मम्मा से मिलकर बाहर गए, सब पूछने लगे क्या हुआ। इन्होंने कहा कि आप जाके मम्मा को अपनी आंखों से देखें, मम्मा बहुत पावन है, वो अवतरित देवी है।
यह दुनिया एक युद्ध भूमि है, जहाँ हमारा युद्ध आपस में नहीं बल्कि पांच विकारों से है। विकार माना कोई भूत नहीं, लेकिन विकारी संकल्प जो हमारे मन में चलते हैं। मम्मा कहती थी ज्ञान की शक्ति से हमें उन पर विजय पाना है। मामा बहुत शक्तिशाली थी, उनके सामने कोई भी विकारी दृष्टि वाला एक पल के लिए भी खड़ा नहीं रह सकता था।
गायत्री माँ दुख और असुरक्षा के समय बुरी दशा समाप्त करने वाली है। उनके वरदान और शक्ति के कारण आत्माएं सच्चा आनंद और उल्लास का अनुभव करती हैं। जब कभी भी मम्मा से मिलते और उसका हाथ पकड़ते, हमें लगता था कि उनसे सकाश और खुशी मिल रही है। मम्मा के हाथों में विशेष शक्ति का जादू था। मम्मा ने नलिनी बहन से पूछा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? उन्होंने उत्तर दिया, खाना पीना और मौज मनाना।
मैंने एक बार पंछी का घोंसला देखा। माँ पंछी अपने बच्चों के मुंह में दाना दे रही थी। बहुत सुंदर दृश्य था। मम्मा ने बहुत मधुर आवाज में पूछा, देखो आप और इस पंछी में क्या अंतर है? मनुष्य भगवान के वरदान पाते हैं, उनको बुद्धि का भाग्य मिला है। बच्चे को जन्म देना और पालना करना ये तो पंछी भी करता है, तो मानव और पंछी दोनों के बीच में अंतर क्या रहा? मनुष्य को सब जीव जंतुओं से ऊंच क्यों माना जाता है? मनुष्य जीवन का महत्व क्या है? ये कहते हुए मम्मा ने मुझे पुचकारा। उस पुचकार में सब प्राप्तियों का अनुभव किया। उसके बाद मम्मा ने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मनुष्य जीवन हीरे तुल्य कैसे, ये सब बातें बताकर मेरी बुद्धि की आंख खोल दी। उनकी मधुर मुस्कुराहट ने मेरे में ताकत भर दी, जो मुझे सही रास्ता और मंजिल मिल गई। अगर कोई किसी से नाराज हो जाते तो फिर मम्मा उनको समझाती थी। मम्मा एक योग्य न्यायाधीश भी थी। उन्हें समझाकर महसूस कराती थी कि ये गलत है। केवल समझाती नहीं थी लेकिन उस माया पर विजय पाने की शक्ति भी भरती थी।
मम्मा ने निरंतर मुझे इस रूहानी मार्ग पर निर्णय लेने में मार्गदर्शन दिया। मैं दुखी होकर मम्मा को कहता था, मैं सहन नहीं कर सकता। मम्मा ने पूछा, तुमने कभी प्रेशर कुकर को देखा है? मैंने कहा, हाँ मम्मा, एक बार प्रेशर होते ही उसमें से हवा निकल जाती है। मम्मा ने कहा, मैं सोचती हूँ आप वैसे नहीं होना। मम्मा ने फिर अपने जीवन के कई अनुभव बताए और कहा, आप नंबर वन बनोगे अगर सहन करोगे। समय अनुसार मैंने देखा कि सहनशीलता सबसे महान सत्य था मम्मा के जीवन में। मैंने फिर कभी ही मम्मा से ऐसा नहीं कहा। सहनशीलता मेरे जीवन का मंत्र बन गया।
मम्मा चंद्रमा जैसे शांति और शीतलता के कार्ब में दिखाई देती थी। उनका जीवन सुगंधित पुष्पों के बगीचे जैसा था। उनके कर्म दिव्य गुणों की सुगंध फैलाते थे। मम्मा की आंखों में रूहानी प्रकाश, ममतामय प्यार और दुलार दिखाई देता था। संतोषी माँ संतुष्टता का स्वरूप है, जो अपनी ही संतुष्टता की विशेषता से संतुष्टता की भावना लाती है और सुखदायी बनाती है।
मम्मा बहुत बुद्धिजीवी और शांत थी। बहुत सारा कार्य हाथों में होते हुए भी कभी मम्मा के चेहरे पर, उनके चलन में, बातचीत में कोई बदलाव नहीं दिखाई दिया। वह एकाग्रचित, शांत और मधुर थी। वो बहुत जिम्मेवार थी लेकिन हमने कभी मम्मा को बाहर मुखी व अशांत नहीं देखा। मम्मा हमेशा खुशनुमा रहती थी। जब किसी ने कोई गलती की, मैंने नहीं देखा मम्मा को कभी क्रोधी बनते हुए। वह हमेशा कहती थी, कभी क्रोधी नहीं बनो, कुछ भी हो, कितना भी किसी के हाथ पे घाटा पड़े, प्यार से समझाओ और ठीक करो। मैंने एक बार मम्मा से कहा कि एक भाई बहुत निराश रहता, अगर कोई उसकी बात न मानता तो वो कुछ भी कर सकता है। मम्मा ने कहा, सुनो, अगर प्यासे व्यक्ति को तुम 36 प्रकार के भोजन दोगे तो क्या वो संतुष्ट होगा? इसलिए आप उस आत्मा के संस्कार को ध्यान में रखो। वह जो भी कहता है स्वीकार करो और संतुष्ट करो। मम्मा ने उसे ओके नाम दिया। मम्मा द्वारा प्राप्त ओके नाम से उसमें प्यार जागृत हो गया और वो बाबा का सच्चा बच्चा बन गया। मतलब उसने अपने स्वभाव का परिवर्तन किया। मम्मा द्वारा ओके नाम उसके लिए वरदान बन गया।
मम्मा के लिए खाने के बारे में कुछ पसंद या नापसंद वाली बात ही नहीं थी। वह कभी भी यज्ञ प्रसाद के बारे में कुछ बात नहीं करती थी। जो कुछ भी मिलता था मम्मा ने उसे बहुत प्यार और इज्जत से स्वीकार किया बिना किसी आश के।
मम्मा पूना में आई और मेरे साथ 5 सप्ताह रही। मैंने देखा मम्मा ने इतनी सेवा की लेकिन कभी मुख से वर्णन नहीं किया। वह बहुत अंतर्मुखी थी। वह अपने आप को निमित्त समझती थी और हमेशा आंतरिक नशे में रहती थी। उनके चेहरे से खुशी और नशे की झलक दिखाई देती थी। मम्मा को अपने पाठ का कोई अभिमान नहीं रहा। वो त्याग और तपस्या की मूर्ति थी।
दुर्गा निराकार भगवान से कमजोरियों को खत्म करने के लिए शक्ति देती है। लोग देवियों की मूर्ति को पहाड़ों की गुफाओं में छिपाकर उनके सामने दीवा जलाते हैं। हमको भी ऐसा ही लगा कि मम्मा जैसे अंतर्मुखता की गुफा में बैठी हैं। उनसे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं और उनकी आंखें शक्ति का अनुभव कराती थी।
दुर्गा देवी की शेर पर सवारी दिखाते हैं, अर्थात हिंसा पर जीत पहनना। सत्यता की शक्ति से, प्रेम की शक्ति से, सत्यता बताने में निर्भयता और स्वयं में सत्यता भरने में निर्भयता। मम्मा का जीवन बहुत ही शक्तिशाली आईना है। मम्मा को देखते ही हमें अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का मालूम पड़ता था।
एक बार मम्मा से पूछा, कौन सी एक बात आपको सबसे आगे लेकर गई? मम्मा ने बताया, मैं मानती हूँ ये जो दृढ़ता का गुण है वो मेरे सर्व संकल्प पूर्ण कर रहा है और मुझे आगे बढ़ा रहा है।
मम्मा का सब कुछ शक्तिशाली रहा, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। यज्ञ ने जो मकान आबू में लिया था उसे खाली कराने के लिए एक बार राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया था। सारे सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी मकान के बारे में बात करने के लिए मुख्यालय पर आए थे। यज्ञ का सामान इस मकान में भरा हुआ था और कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी जो मुख्यालय को बदले। यज्ञ आर्थिक रूप से भी बहुत कष्टों से गुजर रहा था। ब्रह्मा बाबा सेवा अर्थ मधुबन से बाहर गए हुए थे। ऐसी परिस्थिति में सबने बहुत मुश्किल का अनुभव किया, लेकिन उस मुश्किल परिस्थिति में मम्मा ने विशेष योग का प्रयोग किया और स्थिरता से, अडोलता से उसे पार किया। ऐसे समय पर भी मम्मा ने विशेष योग का कार्यक्रम रखकर शांति और शक्ति से मजबूत रूहानी किला तैयार किया। उनकी अचल अडोल स्थिति को देखकर दूसरे बेफिक्र हो गए और परिस्थितियों का साक्षी दृष्टा होकर सामना किया। जल्द ही सब कुछ ठीक ठाक हो गया।
हम अष्ट शक्तियों के बारे में कहते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वह आठों शक्तियां हमने ममा में देखी। एक बल, एक भरोसा, सारी दुनिया एक तरफ और ममा एक तरफ। वह शक्ति दल की कमांडर थी। उनके बोल, चाल, बातचीत से सबको ये भासना मिलती थी वह महान दल की कमांडर है। कोई भी परिस्थिति हो, ममा संपूर्ण निर्भय रही।
ममा ने शिव शक्ति सेना को हर परीक्षा में नई दुनिया की स्थापना के कार्य की याद दिलाई। कैसी भी परिस्थिति में ममा अडोल और अचल रही और मुस्कुराते हुए सामना किया और विजयी बनी। लक्ष्मी मानव जीवन का लक्ष्य, इस देवी की निशानी है ऊंचा दिव्य ज्ञान और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस की प्राप्ति। यह जीवन का लक्ष्य है।
मैंने मम्मा के हर गुण की तारीफ की। मैंने कभी मम्मा को किसी भी कार्य में समय व्यर्थ गंवाते नहीं देखा। हर एक में गुण देखना, किसी में अवगुण न देखना, नवर्णन करना, ज्ञान देना, मार्गदर्शन करना और अनेकों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहयोग देना, यही विशेषता मैंने मम्मा से सीखी है।
मम्मा बहुत शांति से फरिश्ते की तरह चलती थी। किसी को यह मालूम नहीं पड़ता था कि वह कब कहाँ जाती है या आती है और कब किसके पीछे खड़ी हो जाती है। मम्मा कहती थी, कभी भी जोर से बातें करके दूसरों का ध्यान खिंचवाना नहीं है। वह कहती थी, नजदीक जाओ और कहो कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ममा ने इतना धीरे बोलना सिखाया ताकि तीसरा व्यक्ति हमारी बातें सुन न पाए। ममा कहती थी, धीरे बोलो, शांति और प्यार से बोलो, तुम देवता बन रहे हो। देवताएं कभी जोर से नहीं हंसते, जोर से नहीं बोलते और आवाज करके नहीं चलते। हमारा चलना देवताओं जैसा दिखाई दे, जरा भी चलने में आवाज नहीं होनी चाहिए। मम्मा ने हमें दिव्य गुण और शांति की रोशनी दी। वह हमारा ध्यान आंतरिक अविनाशी चीज की ओर खिंचवाती थी। वह सर्व गुणों का सुंदर मंदिर थी। मम्मा एक का ही सुनती थी, एक ही उनके दिल में बसता था। वह एक के लिए प्यार में खो जाती थी और असंभव भी संभव बन जाता था। ओम शांति।
मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं, मन की आँखों से हर पल ही तुझको देखूं। बाबा खड़े हैं पास मेरे, दिल से दुआएं मांगूं। बाबा मेरे